ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय संख्या 3, अध्याय का नाम है कृष्ण जन्म, श्लोक संख्या 30। उपसंहार विश्वनात्मा द रूपम आलोकिकम शंख चक्र गदा पद्मा जुश्रिया जुष्टम चतुर्भुजम उपसंगर विश्वात्माना अदो रूपा अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्मा श्रिया जुष्टम चतुर्भुजम उपसंगर विश्वात्माना अदो रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्मा श्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। धन्यवाद। शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की उपसंग्रह वापिस ले लीजिए। विश्वात्मना हे विश्वव्यापी भगवान, अदह उस रूपम स्वरूप को अलौकिकम इस जगत में अप्राकृतिक शंख चक्र गदा पद्मा शंख चक्र गदा तथा कमल से युक्त श्रिया इन ऐश्वर्यों से युक्त जुष्टम अलंकृत चतुर्भुजम चार हाथ वाले। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी भगवान हैं और आपका यह चतुर्भुज रूप जिसमें आप शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं इस जगत के लिए आप प्राकृत हैं। कृपया इस रूप को समेट लीजिए और सामान्य मानवीय बालक बन जाइए जिससे मैं आपको कहीं छिपाने का प्रयास कर सकूं। तात्पर्य, देवकी भगवान को छिपाने की सोच रही थी। वे अन्य बालकों की तरह इन्हें कंस के हाथों सौंपना नहीं चाह रही थी। यद्यपि वसुदेव ने वचन दिया था कि वे कंस को हर बालक दे दिया करेंगे, किंतु इस बार वे अपना वचन भंग करके बालक को कहीं छिपा देना चाहते थे, किंतु इस अद्भुत चतुर्भुज रूप के कारण उन्हें छिपा सकना असंभव हो। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो बहुत ही हमारे सौभाग्य की बात है कि जन्माष्टमी के अवसर पर हम स्वतः ही दशम स्कंद में पहुंच गए और वर्णन भी कृष्ण जन्म का चल रहा है और बहुत ही सुंदर प्रसंग। भगवान प्रकट हो चुके हैं कंस के कारागार में चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, पितामह धारण किए, बहुत सुंदर बाल, सभी आभूषणों से युक्त। देवकी और वसुदेव समझ गए ये वही भगवान है जिनकी हमने बहुत तपस्या की थी। भगवान इसलिए चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए देवकी और वसुदेव को आश्वासन देने के लिए कि बहुत जन पहले जब आपने मेरी तपस्या की थी प्रिशनी और सूतपा के रूप में 12,000 वर्ष देवताओं के, तो मैं वही भगवान हूँ। मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। और ये भगवान की भगवत्ता को जानने के बाद भी वात्सल्य भाव के कारण देवकी और वसुदेव दोनों भयभीत हैं, क्योंकि कंस ने उनके पहले 6 पुत्रों को अवध कर दिया बहुत क्रूरता से। और वसुदेव ने बहुत प्रार्थनाएं की। वसुदेव की प्रार्थना के बाद देवकी ने 23 नंबर श्लोक से प्रार्थनाएं शुरू की और हर प्रार्थना में अपना भय जाहिर कर रहे हैं और आज के श्लोक में भय बताते हुए कर रहे हैं उपसंहर विश्वात्मना। आप पूरे विश्व में व्यापी हैं लेकिन उपसंहर अपना यह रूप वापिस ले लीजिए। कौन सा रूप? अलौकिकम। ये आप प्राकृतिक रूप है, आपकी चार भुजाएं हैं। इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य दिखता नहीं जिसकी चार भुजाएं हैं, तो इसको आप वापस ले लीजिए। शंख चक्र गदा पद्म श्रिया जो आपने सारा ऐश्वर्य है इसको समेट लीजिए चतुर्भुज रूप को। ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम आपको छिपा सकें। कंस को पता भी ना चले आप पैदा हुए, आपको हम साधारण मनुष्यों में छिपा सकें। और श्रीला प्रभुपाद जी ने छोटा तात्पर्य दिया लेकिन बहुत सुंदर इसमें पॉइंट्स हैं कि अभी तक वसुदेव जाने जाते थे अपने वचन का पालन करने के लिए। तभी देवकी और वसुदेव के विवाह के समय जब वसुदेव ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने हर बालक को आपको समर्पित करूँगा, तो कंस को वसुदेव की रेपुटेशन पे इतना विश्वास था, उनके चरित्र पे इतना विश्वास था, उन्होंने बोला ठीक है। कंस जैसे असुर को भी वसुदेव के चरित्र पे इतना विश्वास था, और वसुदेव ने अपने चरित्र का दिखाया भी, हर अपने संतान को ले भी गया। लेकिन अब कृष्ण प्रकट हुए तो बोला बस जो वचन दिया था तोड़ दें उसको, है ना, और हम अब कृष्ण को छुपाएंगे। तो आज के इस विषय में हम ये बताए करेंगे कैसे भक्त भगवान को छिपाते हैं, और कई बार भगवान भी भक्तों से छिप जाते हैं, और भगवान को छिपाने में और भगवान भी खुद छिपने में अपने वचनों को कैसे तोड़ते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारा इस कौन संस्था का उद्देश्य है कि भगवान को पूरे संसार में प्रकट करना, लेकिन कई बार भक्त भी कई बार भगवान को छिपाते हैं, और कई बार भगवान भी भक्त से छिपते हैं। तो और इसके छिपने छिपाने में अपने सारे वचनों को तोड़ भी देते हैं। तो इस पर कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देवकी और वसुदेव के कुछ वात्सल्य भाव के ऊपर। देवकी और वसुदेव ने पूरा देख लिया भगवान चतुर्भुज रूप में है, फिर भी वो डर रहे हैं। और ये जो भय है ये उनकी महामाया के कारण नहीं है, भगवान की अंतरंगा शक्ति के कारण है। क्योंकि जो वात्सल्य भाव है इसकी ये महिमा है कि वात्सल्य भाव में भगवान से बहुत अत्यधिक आसक्ति हो जाती है, और भगवान पे एक दया की भावना उत्पन्न होती है, ऐसा महसूस होता है कि भगवान हम पे निर्भर हैं, तो इसलिए उनको डर लग रहा है। हालांकि कंस भगवान कृष्ण के सामने कुछ भी नहीं है, एक जैसे कहते हैं बैक्टीरिया के समान भी नहीं है, और हो सकता है कंस बहुत क्रूर असुर हो, लेकिन भगवान के एक एक छिद्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, ये है महाविष्णु जो कि कृष्ण की एक केवल कला है। और फिर कंस भगवान के सामने कहाँ टिक सकते हैं, ये सब जानते हुए भी देवकी और वसुदेव भयभीत हैं, ये उनका वात्सल्य भाव है। और वो कह रहे हैं कि आप छिप जाइए, अपने चतुर्भुज को छिपा लीजिए, क्योंकि दो भुजाओं वाले आप साधारण मनुष्य बन जाएंगे तो जन साधारण में आपको छिपा सकते हैं। अगर आप समझिए जन साधारण में कोई व्यक्ति घूम रहा हो चार भुजाएं लेकर, शंख चक्र गदा पद्म लेकर, तो बोले सब घबरा जाएंगे, या तो बोलेंगे कुछ नाटक कर रहा है, नकली है, या कहाँ से आया उसको छिपाना, इतना वो स्पष्ट हो जाएगा उसको छिपा नहीं सकते। तो इसलिए आप प्लीज अपने कृपा करके अपने आप को छिपा लीजिए। दूसरा अगले श्लोक में देवकी बोलेगी कि आप अपने चतुर्भुज को इसलिए भी छुपाइए क्योंकि जब सारे शास्त्रों में लिखा है कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड आपके ही अंदर हैं और आप मेरे गर्भ में आए, ये कोई विश्वास ही नहीं करेगा। कैसे कैसे हो सकता है कि जिनके गर्भ में सारे ब्रह्मांड हैं वो आपके गर्भ से प्रकट हो गए, तो लोग मेरा उपहास करेंगे, वो ये कुछ नकल मार रही है, ये नकली भगवान है, असली हो ही नहीं सकते, तो इसलिए इस प्रकार के उपहास को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी कंस का वह है, आप अपने आप को द्विभुज रूप में ले आइए, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में। तो ये देविका का वात्सल्य भाव है। इसी प्रकार से हम देखते हैं सनातन गोस्वामी द्वारा रचित बृहद भागवतामृत में, जब अक्रूर मथुरा से वृंदावन आते हैं कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए, तो यशोदा को मालूम चल जाता है। तो यशोदा कंस से इतनी भयभीत हो जाती है कि वो अपने आप को एक कमरे में छुपा लेती है, और कृष्ण को भी अपने ऊपर अपने गोद में रख के छिपा लेती हैं, और अपना ऊपर अपनी साड़ी का कपड़ा डाल के उसको छिपा लेती हैं, बहुत डर लग रहा है उसको, और तरह तरह की वैदिक प्रार्थनाओं का उच्चारण शुरू करती हैं कृष्ण की रक्षा के लिए। अगले दिन अक्रूर आते हैं, नंद महाराज से बात करते हैं, और उनको तरह तरह के तर्क देते हैं कि कितना आवश्यक है कृष्ण बलराम को भेजना, कंस का वध करना है, कंस के बहुत अत्याचार बढ़ गए हैं। तो जब पूर्ण रूप से नंद महाराज आश्वासित हो जाते हैं, फिर वे जाके वो यशोदा मैया को आश्वासित करते हैं, और फिर यशोदा मैया बड़े कष्ट के साथ कृष्ण को बाहर जाने देती है। तो ये यशोदा जी का भी वात्सल्य भाव है कि वो कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, जिस चीज़ से हमें बहुत प्रेम होता है, आसक्ति ज़्यादा होती है, उसको खोने का डर हमेशा हमारे में बना रहता है, और उसको छुपाने के लिए हम अपने सारे वचन भी तोड़ देते हैं ना? जिस प्रकार से साधारण संसार में एक व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रेम किससे होता है, धन से, है ना, तो धन से प्रेम होता है, तो धन को छिपाने के लिए कम से कम टैक्स देना पड़े कुछ करता है, उसके लिए गलत स्टेटमेंट भी देगा, प्रॉमिस भी करे, कुछ भी करेगा, उसको बचा के रखेगा। तो भगवान तो और भक्ति तो सबसे बड़ा धन है, तो उसको छुपा के रखने के लिए वसुदेव ने अपना वचन तोड़ा और ये वात्सल्य भाव है। तो हम देखते हैं कि भगवान भी अपने आप को कई बारी भक्तों से या अभक्तों से तो अप्रकट रखते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, अपने आप को योग माया से आवृत रखते हैं। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति भगवान को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। लेकिन भगवान कई बार अपने अपने आप को उन्नत कोटि के भक्तों से भी अप्रकट कर लेते हैं, जैसा कि भागवतम के दशम स्कंद में वर्णन आता है, भगवान गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं और रासलीला करते करते अप्रकट हो जाते हैं। गोपियां रात्रि के मध्य में सब कुछ छोड़कर आई हैं, लोक लज्जा घर परिवार सब कुछ छोड़कर आई और भगवान अप्रकट हो गए। गोपियां प्रेम में पागल हो जाती हैं और इतने उन्माद में हो जाती हैं, वो एक एक वृक्ष लता के पास जाती हैं, पशु पक्षियों से पूछती हैं कहाँ गए कृष्ण, और इतने प्रेम में पागल हो जाती हैं कि भगवान की लीलाओं का अनुकरण करना शुरू कर देती हैं और फिर भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं अंततः। तो गोपियां अपनी नाराजगी दिखाती हैं कि आप कैसे कृतघ्न हैं, आपने हमारे प्रेम के साथ आदान प्रदान नहीं किया, आप क्यों अप्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं कृतघ्न नहीं हूँ, मैं आपके साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहा था, मैं इसलिए अप्रकट हुआ क्योंकि मैं आपकी प्रेम की प्रगाढ़ता देखना चाहता था। बोले प्रेम की प्रगाढ़ता देखना चाहते थे तो इस कीमत पे हमें इतना कष्ट दे के। जब गोपियों ने ये कहा तो भगवान का गला रुद्रुद हो गया एकदम, और अपने गले को साफ करते भगवान ने बोला नहीं नहीं, मैं तो जब आप मेरी लीलाओं का अनुकरण कर रहे थे मैं आपका इतना प्रेम देखकर स्तब्ध हो गया, हिल ही नहीं पाया, इसलिए आपके पास नहीं आ पाया। बोले लेकिन आपने इतनी देर कर दी, हम तो प्राण त्यागने वाले थे। भगवान ने बोला नहीं नहीं, मैं आपके साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहा था तो आपकी जो प्राण वायु थी वो शरीर से निकल नहीं सकती थी, वो वहीं रहती। तो ऐसा जब भगवान का आदान प्रदान सुना तो गोपी ने बोला आपने कहाँ से हमें देख रहे थे। तो भगवान ने बोला मैं सब जगह था, विश्वात्मा सब जगह हूँ, पेड़ के पीछे, पत्तियों के पीछे, जहाँ जहाँ आप गई वहाँ वहाँ मैं था और मैं आपको देख पा रहा था। तो ये भगवान का भक्तों से प्रेम होता है। भगवान कई बारी ये निर्णय लेते हैं अपने आप को अप्रकट करने के लिए, भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के लिए। कई बारी हम साधकों में भी ये भाव आ जाता है, इतने साल हो गए जप करते हुए कुछ हो तो रहा नहीं, है ना, तो हमें लगता है कुछ भगवान हमें ध्यान भी नहीं दे रहे, कुछ रेसिप्रोकेशन में नहीं हो रहा, लेकिन भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं कितनी प्रगाढ़ता से हम उनको पुकार रहे हैं, केवल ऊपरी ऊपरी रूप से कि हृदय से। जब रो रो कर हम भगवान को हृदय से पुकारेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, निश्चित रूप से भगवान प्रकट होंगे। भगवान देखना चाहते हैं कि और इंटेंसिटी आए, और इंटेंसिटी, है ना, हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए इतने साल हो गए, नहीं, अभी और भगवान चाहते हैं और गहराई से भक्ति करें, भगवान के विरह में और पीड़ित हों, तो फिर भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान हम सबको देख रहे हैं, ये कभी भी साधक के अंतरंग जो अंदर का संघर्ष चल रहा है उसको भी भगवान समझते हैं और भगवान एक एक साधक पे पूरा ध्यान देते हैं। इसी ढंग से हम देखते हैं आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, पास से प्रभु ने बोला जगन्नाथ जी के विषय में जरूर कहिए, तो मैं कुछ प्रयास करूँगा। हम देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी के बड़े विशेष भक्त राजा इंद्रद्युम्न अवंती देश में थे और राज ऋषि थे, उनकी सभा में साधुगण आया करते थे, भगवान की चर्चा करते थे। तो राजा इंद्रद्युम्न ने एक बारी सब साधुओं से पूछा बहुत प्रेम विहल होकर, क्या ऐसा कोई इस पृथ्वी पे क्षेत्र है जहाँ मैं भगवान को अपने इस चर्म की आंखों से देख सकता हूँ, उनका दर्शन कर सकता हूँ, मैं बहुत लालायू हूँ तो भगवान के दर्शन करने के लिए। तो भगवान राजा का इतना प्रेम देखकर साधुओं के पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन राजा की इतनी दृढ़ इच्छा को देखा कि वो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो भगवान स्वयं एक साधु बनकर आ गए और बोले कि मैंने बहुत से तीर्थ स्थानों में भ्रमण किया है और मुझे मालूम चला आपकी ऐसी इच्छा है, तो मैं आपको एक क्षेत्र के बारे में बताना चाहूँगा। ये एक क्षेत्र है समुद्र के तट के पार और नीलगिरी नामक पर्वत के पास, एक वन है वहाँ वट वृक्ष के पास, एक कुंड है जो कि इसका पानी बहुत पवित्र है, वहाँ पर बहुत ही दिव्य वातावरण है, वहाँ मैंने खुद देखा रात्रि के समय देवतागण आते हैं भगवान की स्तुति करने के लिए, अर्चना करने के लिए, और उन भगवान का नाम है नील माधव, है ना। ये जब कहा तो राजा इंद्रद्युम्न तो बहुत एकदम उत्साहित हो गए जाने के लिए, और ये सब बताकर जो वो साधु थे एकदम अप्रकट हो गए। राजा इंद्रद्युम्न तो बहुत ललायित हो गए, क्या करें, अपने छोटे भाई वाचस्पति को बुलाया, बोलो ढूंढो एक क्षेत्र को कहाँ पे है, और बहुत लंबी कथा है. विद्या वाचस्पति ने बहुत परिश्रम किया, इधर उधर घूमे, बड़े तरह से तरकीबें लगाई, तब जाके उनको मालूम चल गया कि नील माधव जी कहाँ पे हैं. फिर वापस आए, इंद्रदुम को लेकर गए. जब इंद्रदुम वहां पहुंचे तो भगवान अप्रकट हो गए, है ना. बड़े दुखी हुए, इतने प्रयास के बाद पहुंचे और भगवान अप्रकट हो गए. और फिर भगवान ने उनको बताया, घबराओ मत, मैं लकड़ी का, अब मैं दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा. ब्रह्मा जी के पहले प्रारंभ में मैं नील माधव के रूप में और दूसरे प्रारंभ में मैं जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होता हूँ. तो इसके बाद फिर वो जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं जगन्नाथपुरी में. और जगन्नाथ भगवान की जय. तो इसलिए भगवान अपने भक्तों के साथ ये लीला करते रहते हैं. भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के लिए भगवान कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं. जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय. इसी प्रकार हम लोग मायापुर धाम में जाते हैं, वहाँ पे सीमंत द्वीप में, राजापुर में, कितने लोगों ने जगन्नाथ जी के दर्शन किए राजापुर में ना. और उनका भी बहुत बड़ा इतिहास है, कैसे वो भगवान प्रकट हुए. आप सब जानते होंगे कि चैतन्य महाप्रभु के समय बहुत अच्छे जगन्नाथ जी के भक्त, जिनका नाम था जगदीश गांगुली, वो हर वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा में जाते थे पैदल 900 किलोमीटर चल के. और बहुत प्रेम था उनको जगन्नाथ जी से. लेकिन वो वृद्ध अवस्था में हुए, उनके शरीर में कुछ रोग हो गया और वो अंधे हो गए. अंधे हो गए तो कैसे जाएं जगन्नाथपुरी. और उनके मित्रों ने बोला, आप अंधे हो, कैसे जा सकते हो, यहीं रहो. और बेचारे जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं करने जा पा रहे, बहुत दुखी थे. और तभी इतने दुखी थे, तभी भगवान उनके सपने में आए और बोले, आप दुखी मत होइए, कल सुबह जब आप स्नान करेंगे तो आपको लकड़ी का एक लट्ठा आपके सर पे लगेगा, आपकी दृष्टि भी वापस आ जाएगी. और इस लकड़ी के लट्ठे को लेकर आप गांव में जाइए और गांव में एक बड़ई होगा, उसको पकड़िए और वो बड़ई को कौड़ का रोग होगा, उससे मेरे विग्रह बनवाइए, मुझ में और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं होगा. तो बड़े खुश हो गए. अगले दिन जैसे सुबह जाते हैं वैसे ही होता है, स्नान कर रहे हैं गंगा में, लकड़ी का एक लट्ठा आता है उनके सर पे लगता है, उनकी दृष्टि वापस आ जाती है. बड़े खुश होते हैं, उस लट्ठे को बाहर निकलते हैं, पूरे गांव में ढूंढते हैं, वो बड़ई मिलता है. बड़ई को कोढ़ का रोग है, उससे बोलते हैं, अब जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाइए. बोले, मैं कैसे बना सकता हूँ, खून निकल रहा है, पस निकल रहा है. बोले, नहीं नहीं नहीं, भगवान की आज्ञा है, आप बनाएंगे तो आपका एक कोढ़ का रोग भी ठीक हो जाएगा. तो थोड़ा सा उनका उत्साह बढ़ाता है, वो बनाना शुरू करते हैं तो बन जाते हैं भगवान. वो बहुत खुश होते हैं, उनकी अर्चना शुरू कर देते हैं. फिर साथ के एक नीम के पेड़ से वो बलराम जी और सुभद्रा जी के विग्रह बना लेते हैं और जिन से अर्चना शुरू कर देते हैं. लेकिन जब जगदीश गांगुली जी का तिरोभाव हो जाता है तो गांगुली परिवार में सही ढंग से उनकी अर्चना नहीं हो रही होती. तो भगवान ने निर्धारित कर लिया होता कि मुझे अप्रकट हो जाना चाहिए, है ना. तो फिर क्या हुआ, उसी गांव में हैजा फैल जाता है. तो सभी आते हैं भगवान के मंदिर में, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए. तो जगन्नाथ जी उस मंदिर के पुजारी के सपने में आते हैं, बोले, इस खानदान की गांगुली परिवार की एक महिला है जिसका चरित्र ठीक नहीं है, उसके चरित्र व्यभिचारिणी है, उसके कारण पूरा का पूरा एक कुल नष्ट हो जाएगा और पूरा का पूरा गांववासी मर जाएंगे, इसलिए आप तुरंत यह क्षेत्र छोड़ के चले जाइए. अगले दिन सुबह देखते हैं तो पूरे गांगुली परिवार के सभी सदस्य मृत हैं और सभी लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं. और जगन्नाथ जी का मंदिर एकदम नीचे पेड़ मिट्टी से उसमें ढक जाता है एकदम, और एकदम अप्रकट कर लेते हैं भगवान अपने आप को. और वहाँ पे बहुत बड़ा रेत का ढेर बन जाता है, तरह तरह के जंगली पौधे उग जाते हैं, सांप आ जाते हैं. वो काफ़ी सदियों तक वो ऐसे ही रहता है. और फिर अचानक लोगों ने देखा कि उस पूरे गंदगी के ढेर में, सांपों से भरा हुआ क्षेत्र में, ऊपर एक बहुत नीले रंग का फूल चमक रहा है. और कोई भी उस क्षेत्र के पास जाता था तो वहाँ से आवाज़ आती थी, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ. तो लोग डर के भागते थे, कोई भूत है क्या है. और ये चलता रहा और ये 1958 तक, 500 वर्ष तक ऐसे ही भगवान रहे. 1958 के आसपास एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कोई जैमिनी घोष, वो साइकिल से वहाँ से गुजर रहे थे, तभी तूफान आया और एक बांस का पेड़ उनके सामने आके गिर गया. वो इतने परेशान हो गए, उनको लगा कुछ गड़बड़ है, कोई भूत पिशाच है. तुरंत पृथ्वी पर लेट गए और लेटे रहे काफ़ी समय तक, वो बेहोश हो गए. फिर उनको एक आवाज़ आई, घबराओ मत, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, उठो. तो बोले, अगर तुम मेरे मित्र हो तो तुमने मेरे साथ ये क्यों किया, और मुझे तुम सुरक्षा से नवद्वीप पहुँचा दो. तो तभी उन्होंने देखा कि बड़े जैसे किसी ने हाथ से उठाकर उनको नवद्वीप तक पहुँचा दिया. तो बड़े हैरान हुए. फिर उन्होंने बोला कि मैं कोई भूत वगैरह नहीं हूँ, मैं स्वयं जगन्नाथ हूँ. तो बोले, अरे जगन्नाथ जी हैं. तो फिर वो उस क्षेत्र के जो उस जिनकी वो जमीन थी उनके मालिक के पास गए, उस क्षेत्र को साफ किया गया और उसमें से जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा जी के विग्रह निकले, 500 वर्ष पुराने। और जगन्नाथ जी के विग्रह हूबहू वैसे ही बलराम जी और सुभद्रा के विग्रह में कुछ दीमक लगा हुआ था, लेकिन 500 वर्षों से भगवान वैसे के वैसे। तो उसके बाद उन्होंने उनकी सेवा शुरू की और सेवा चलती रही। 1979 में फिर वहाँ के पुजारी को लगा कि मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊँगा, और फिर भगवान उनके स्वप्न में आए कि मेरे बहुत अच्छे भक्त हैं यहाँ पे, उनको वो दिया जाए। तो फिर इस्कॉन संस्था को फिर वो मंदिर प्राप्त हुआ और फिर उसकी पूजा इस्कॉन के द्वारा की जा रही है। और उसके बाद तो बहुत से पास्ट टाइम्स हैं, आपने सुने होंगे कैसे जगन्नाथ जी ने लीलाएँ की। तो यानी का अर्थ है कि भगवान का जन्म और कर्म भगवान कहते हैं दिव्य है, भगवान का प्रकट होना अप्रकट होना दिव्य है, और भगवान भक्तों के प्रेम को बढ़ाने के लिए प्रकट भी होते हैं और अप्रकट भी होते हैं। इसी प्रकार से भक्त भी अपनी भक्ति की रक्षा करने के लिए, भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए भी भगवान को अप्रकट कर देते हैं। ये भी बड़ी विशेष बात है, ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं अभिराम प्रभु, पहले हम काफ़ी आते थे। अभिराम प्रभु अपने युवावस्था में मार्शल आर्ट सीखते थे, तो बताते थे कि मार्शल आर्ट में मैंने एक बहुत विशेष सिद्धांत सीखा, और वो सिद्धांत है स्लो इज फास्ट। मार्शल आर्ट में जितना आप धीरे धीरे चलेंगे और सही दिशा में चलेंगे तो आप फास्ट हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से कई बारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हमें प्रचार में कृष्ण को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करना होता, अप्रकट रूप से धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप से बताना पड़ता है, और लेकिन बाद में फिर कृष्ण को हम प्रकट कर सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत से तरीके हैं, और हमारे सभी आचार्यों का ये मोड़ रहा। शिला भक्ति सिद्धांत सोई ठाकुर महाराज, जो कि बहुत ही क्रांतिकारी गुरु, उन्होंने क्या कि अपने टाइम में एक बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन किया, और उस उत्सव में उन्होंने बाहर के कर्मी लोगों को बुलाया संगीत गाने के लिए, और तरह तरह के मनोरंजन के स्टॉल्स थे, तरह तरह के ज्योतिष विद्या थी, तरह तरह के उस समय के वैज्ञानिक रूप से जो अनुसंधान हुए वो दिखाए गए थे, उनकी झांकियाँ वगैरह थी, जैसे हम देखते हैं आम क्षेत्रों में सब कुछ था। और बिल्कुल मध्य में हरिनाम संकीर्तन चल रहा था, प्रसाद वितरण चल रहा था, प्रचार कार्य चल रहा था, ताकि जन साधारण को आकर्षित करने के लिए, है ना। तो शिला प्रभुपाद जी का भी यही मूड था। शिला प्रभुपाद जी कुछ भी करने को तैयार थे जन साधारण को कृष्ण भावना भरत में आकर्षित करने के लिए। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे परम पूजनीय स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज। प्रभुपाद जी ने उनसे निवेदन, वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, प्रभुपाद जी ने उनसे निवेदन किया आप वैज्ञानिकों के पास जाके प्रचार कीजिए। तो वैज्ञानिकों के पास वो प्रचार करते थे, बड़े साइंटिफिक टर्म्स यूज करते थे, डायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं कहते थे, तो बड़े असंतुष्ट हो रहे थे एक बारी कि प्रभुपाद आनंद नहीं आता। प्रभुपाद ने बोला नहीं, जो आपका ये प्रचार है ये भी हरि कीर्तन के समान है, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। उसके बाद द्रुतकुर्मा प्रभु भी यहाँ पर आए थे, वो भी अलग अलग वैज्ञानिकों के बीच में जाते हैं और वैज्ञानिक रूप से प्रचार करते हैं। अगर हम वैज्ञानिकों के बीच में जाके सीधा कृष्ण भावना वैद बोलेंगे वो तो भगवान को ही स्वीकार नहीं करते, तो कृष्ण को ऐसे स्वीकार करेंगे। प्रभुपाद ने जब रशिया में कृष्णा पुस्तक इंट्रोड्यूस की, तो प्रभुपाद इतने क्रांतिकारी थे, जबकि प्रभुपाद इतना जोर देते थे कि हर एक पृष्ठ पे कृष्ण होना चाहिए, लेकिन कृष्णा पुस्तक को इंट्रोड्यूस करने के लिए रशिया में प्रभुपाद ने कृष्णा पुस्तक के कवर के ऊपर से कृष्ण शब्द हटा दिया और लिखा उस बुक का नाम लिया द सोर्स ऑफ ऑल प्लेजर्स, सभी आनंद के स्रोत कृष्ण, कृष्ण ने लिखा बस सभी आनंद के स्रोत। किसी ना किसी ढंग से लोग पहले इंट्रोड्यूस हो जाए, है ना। आजकल इस कौन में ये बहुत बड़ा वाद विवाद चल रहा है, है ना, दो भाग हैं, कंजर्वेटिव हैं एक लिबरल हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये क्या हो रहा है, इस कौन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, बिल्कुल पुराने तरीके से चलना चाहिए। कहीं एक दूसरा सेक्शन है नहीं नहीं समय परिस्थिति काल के अनुसार हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस को रीपैकेज करना है कि कैसे लोगों के लिए इसको रेलिवेंट बनाया जाए, तो बहुत बड़ा आपस में द्वंद चलता रहता है हमेशा। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी हमेशा नए नए तरीके अपनाते थे। अब जैसे एक बारी विजय प्रभु जो हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर हैं, ये रशिया में गए और वृक्षों का भक्तों का समाज था, तो उन्होंने सबसे पूछा कि आप में से कितने भक्त लोग पुस्तक वितरण से जुड़े हैं। उन्होंने इस उम्मीद से पूछा था कि सारे हाथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन बड़ी हैरानी की बात ही बड़े कम हाथ खड़े हुए। तो बड़े हैरान हो गए, अरे इतने सारे भक्त रशिया में आज लाखों लाखों भक्त हैं, ये पुस्तक वितरण से नहीं जुड़े, कैसे जुड़े हैं। तो फिर मालूम चला कि रशिया में पिछले 10-20 वर्षों से जो भक्त लोग बन रहे हैं क्योंकि वहां की सरकार ने अब डायरेक्ट कृष्णा भानंद के प्रचार पे रोक सी लगा दी है। अब भक्तों ने क्या किया, फिर अब भक्त लोग अप्रत्यक्ष रूप से तरह तरह के सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोर्सेज, है ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा करके, साइकोलॉजी के नाम से ऐसे ऐसे करके नए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और फिर उसके बाद पुस्तकों का वितरण करके उनको भक्त बना रहे हैं। तो समय परिस्थिति काल के अनुसार हमें देखना पड़ेगा। हम यहाँ भी भारत में भी कहीं कॉलेजेस में जाते हैं, हम डायरेक्टली कृष्णा भावनाविक प्रचार नहीं कर सकते। हम तरह तरह के माइंड कंट्रोल, पावर ऑफ हैबिट्स, ऐसे तरह के सेमिनार दे के लड़कों को आकर्षित करते हैं, फिर धीरे 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 उनको कृष्णा भावनामृत बताते हैं। क्योंकि आजकल लोग मूर्खतावश आध्यात्मिक होना चाहते हैं, धार्मिक नहीं होना चाहते, है ना। वो सोचते हैं नहीं, नथिंग रिलीजियस, हम धर्म निरपेक्ष हैं, रिलीजन बेकार है, सब दंगे फसाद होते हैं धर्म में। हाँ, आध्यात्मिक होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए कुछ, है ना। उनको पता नहीं स्पिरिचुअलिटी क्या है और रिलीजन क्या है, कुछ नहीं पता। लेकिन कुछ जो थोड़ी सी चीज स्पिरिचुअल लगती है, मेडिटेशन टाइप, उसमें वो आकर्षित हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए किसी भी ढंग से आकर्षित हों जिस बारी कई बार कृष्ण को छुपाना पड़ता है ताकि हम बाद में कृष्ण को दे सकें। तो अगर हम चाहते हैं पूरे विश्व में हम कृष्ण को दे सकें, तो भक्तों को ये भी सीखना चाहिए कि किन परिस्थितियों में कैसे कृष्ण को छिपाना भी है। ये क्योंकि अंततः उद्देश्य यही है कि हम कृष्ण को दें। जब तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अमेरिका में राधा दामोदर पार्टी लीड कर रहे थे तो धुआंधार प्रचार कर रहे थे, क्या पुस्तक वितरण हो रहा था, 15-20 बसें हो गई थी, ऐसा जबरदस्त क्रांतिकारी प्रचार। लेकिन उनके प्रचार से काफ़ी भक्त दुखी हो गए, मंदिरों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए सन्यासियों और गृहस्थों के बीच में, सारे के सारे मंदिर खाली हो जाते। वो रात को आते थे, सारे ब्रह्मचारी को किडनैप करके बस में ले आते थे, सुबह प्रेसिडेंट उठते थे जो ग्रस्त होते, कोई भक्ति नहीं है, अरे कहाँ चले गए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसी बात पहुंची, GBC मीटिंग हुई मायापुर में प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद ने उनको सारी बात को समझा, तो प्रभुपाद ने बोला इसको बिल्कुल बंद करो, है ना। तो बहुत परेशान हो गए तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, बोले कैसे, मेरे बहुत प्लान्स हैं, बहुत एक्सपेंड करना है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बोले बिल्कुल बंद करो, है ना। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे खींच कर बोला, प्रभुपाद आप क्या चाहते हैं, शुड आई गो टू चाइना एंड प्रीच, है ना। तो बोला यस, वेरी गुड आइडिया, गो टू चाइना एंड प्रीच, है ना। तो परेशान हो गए प्रभुपाद, बड़े एकदम पूरी रात सोए नहीं। अगले दिन आए प्रभुपाद, आई वॉज जस्ट जोकिंग। प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव नेवर जोक, आपको जाना ही पड़ेगा। सारे फिर उन्होंने आपस में मीटिंग की, उनके साथ और साथी थे गुरु कृपा स्वामी और उनके साथी थे, वो आए प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद अगर आप चाइना में प्रचार करना शुरू करते हैं हम चले जाएंगे, इनको राधा और पार्टी करने, नो तमाल कृष्ण ही जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से तमाल कृष्ण माने और गए। अब चाइना बिल्कुल कम्युनिस्ट कंट्री, और प्रभुपाद बोला चाइना विज द लास्ट कंट्री टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। कैसे गए तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, एकदम पेंट सूट में डालना पड़ा और बोले मैं कि योगा सिखाने आया हूँ यहाँ पे, है ना। और बहुत संघर्ष किया योगा सिखाते सिखाते सिखाते, आज चाइना में कितने भक्त हैं। तो अभी कुछ वर्ष पहले एक चाइनीज भक्त से मैं मिला था, तो वो बता रहे थे एक घटना बताई कि एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक होटल में थे चाइना के, और पूरी योजना बनाए थे कि दीक्षा देने के लिए, है ना। तो उनके पास सारे दीक्षार्थियों के नाम थे, सारी तैयारी वगैरह चल रही थी, पुलिस को खबर लग गई, है ना, और पुलिस आई, और किसी ने भक्त बता दिया कि पुलिस आई है। अब तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड था, उन्होंने समझा पुलिस आ गई है और ये दीक्षार्थियों की लिस्ट है, ये नाम इन्होंने देख लिए, इन सबको जेल में भेजेंगे। तुरंत वो टॉयलेट में चले गए और पीछे एक उनका असिस्टेंट, उन्होंने दरवाजा खोला, बोले कहाँ हैं आपके स्वामी जो कौन है योगा सिखाते हैं, बोले अभी टॉयलेट में आ रहे हैं। महाराज ने क्या किया, जो पूरी लिस्ट थी पूरा फ्लश कर दिया उसको, और फिर उसके बाद बाहर आए, पूरा देखा कोई लिस्ट विस्ट नहीं है, चुपचाप चले। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता था उनको, और फिर जाके कितने कठिनाइयों से उन्होंने फिर इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को चाइना में स्थापित किया। और आज चाइनीज गवर्नमेंट भगवत गीता छाप रही है और भागवतम छाप रही है चाइनीज भाषा में, है ना। तो ये अगर उस समय डायरेक्टली बोलते तो कैसे प्रचार होता। अभी हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो गए थे चाइना में बिजनेस के उसमें, तो वो मार्केट में घूम रहे थे, तो उनको मार्केट में घूमते घूमते आवाज आई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे। बड़े हैरान हो गए, चाइना के मार्केट में हरे कृष्णा कीर्तन, भाग के गए कौन सी दुकान से आवाज आ रही है। तो एक सीडी चल रही थी, तो उसने बोला आजकल ये सीडी बहुत बिक रही है, उनको नहीं मालूम है क्या है, समथिंग टू डू विद योगा, लेकिन एक सीडी बहुत बिक रही है। तो इतने खुश हुए, वाह चाइना में हरे कृष्णा मंत्र की सीडी एक योगा करने के रूप में बिक रही है ना, तो किसी भी ढंग से लोग हरि नाम से जुड़े। तो ये है, कई बारी भक्तों को भी कृष्ण को छिपाना पड़ता है कृष्ण को आगे देने के लिए, है ना। तो ये यहाँ पे देवकी भी कृष्ण की रक्षा के लिए कृष्ण को छुपाना जा रही है। और वसुदेव जी जो इतने सत्यनिष्ठ थे, उन्होंने भी अपने वचन को तोड़ दिया। पहले उनकी पूरी रेपुटेशन चले, कोई बात नहीं, सारी नैतिकता का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी नैतिकता है कृष्ण को प्रसन्न करना। तो विशेष परिस्थितियों में बड़े बड़े महात्मा लोग भी अपने नैतिक स्तरों से ऊपर उठ जाते हैं। शिला प्रभुपाद भागवतम के पहले स्कंद का 13वां अध्याय है, जिसमें विदुर जी धृतराष्ट्र को बहुत कड़वे उपदेश देते हैं और धृतराष्ट्र घर छोड़कर चले जाते हैं रात को। और अगले दिन जब संजय सुबह उठते हैं तो युधिष्ठिर भी देखते हैं, परेशान होते हैं। तो युधिष्ठिर संजय से पूछते हैं कि आप तो धृतराष्ट्र के बहुत ही विशेष साथी हैं, आपसे पूछे बिना धृतराष्ट्र कुछ नहीं करते, कहाँ गए मेरे पिता माँ? तो बोले मुझे भी नहीं बताया। और संजय कहते हैं कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा धोखा दिया गया, अभी तक हर कार्य धृतराष्ट्र मुझसे पूछ कर करते थे, अब बिना बताए चले गए। तो वहाँ पे शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो महान आत्माएं होती हैं वो भी कभी कभी धोखा देती हैं महान उद्देश्य के लिए। और प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत से उदाहरण देते हैं, सनातन गोस्वामी जी का उदाहरण देते हैं, किस प्रकार से उन्होंने उस जेलर से झूठ बोला कि मुझे मक्का में जाना है, जाने दो। किस प्रकार से उन्होंने झूठ बोलकर छुट्टी ली थी, मैं बीमार हूँ और भागवतम पढ़ रहे थे। भक्त लोग कई बार ऐसा करते हैं, चलो ब्रेक चाहिए तो ब्रो सिक लीव डाल देते हैं और चलते हैं मायापुर। और करते हैं, कई बार करना पड़ता है ऐसा। और किस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने कुल पुरोहित से झूठ बोला, यदुनंदन आचार्य से, उन्हें बोला वो पुजारी सेवा के लिए नहीं आ रहा, ठीक है मैं जाके बात करता हूँ, इनको मौका मिला घर से बाहर निकलने का। और फिर बोला अपने पुरोहित जी को आप जाइए मैं कर लूँगा, जैसे वो साइड में जोर से भागे वो जगन्नाथपुरी की तरफ, है ना, इतना सुंदर उनको अवसर प्राप्त हुआ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी, इन सब ने मौका आने पे झूठ भी बोला, रिश्वत भी दी, क्यों? कृष्ण को पाने के लिए, है ना। तो इसी ढंग से कई बारी भक्तों को ये करना पड़ता है बड़ी विशेष परिस्थितियों में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इसको एक साधारण नियम बना लें, ये एक्सेप्शन्स हैं और एक्सेप्शन्स आर एक्सेप्शनल, वो विशेष विशेष परिस्थितियाँ। प्रभुपाद एक इंटरव्यू में बता रहे हैं अपने सभी शिष्यों को कि मैंने भी आप सबको चीट किया, ट्रिक किया। आप यहाँ पर आते थे म्यूजिक सुनने के लिए और बढ़िया बढ़िया मीठे गुलाब जामुन खाने के लिए, इस्कॉन बुलेट्स खाई, और आपने मेरे साथ बैठे कीर्तन किया और आपकी ये स्थिति है ना। और बोले कि मैंने आपकी सरकार को भी ट्रिक किया, आपकी सरकार ने सोचा नहीं होगा मैं ये सब धमाका कर दूंगा, मैं तो उन्होंने सोचा एक बूढ़ा आदमी आया कुछ किताबें लेकर आया, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कितना बड़ा विस्फोट होने वाला है। वास्तव में प्रभुपाद ने भी सबको ट्रिक किया और हम सबको भी ट्रिक किया, हमें से किसी भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम धोती डालेंगे, सोचा था किसी ने आप लोगों ने? तिलक लगाएंगे, हमने सोचा नहीं था कि सर मुंडवा के यहाँ बैठेंगे कभी। ऐसे आते थे अच्छे लगते थे ना, भक्त लोग अच्छे लगते थे, कीर्तन अच्छा लगता था, प्रसाद अच्छा लगता था, लेकिन भगवान है, भगवान तो सब धोखेबाजों में सबसे बड़े धोखेबाज है और खींच लिया सबको। तो ये कई बारी भक्त लोगों को भी कभी धोखा देना पड़ता है, अपने वचन को तोड़ना पड़ता है भगवान को देने के लिए या भगवान की रक्षा के लिए या अपनी भक्ति की रक्षा के लिए। एक बारी जैसे शिला प्रभुपाद हम देखते हैं कि जब क्षमा करें चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन जा रहे थे, तो जब वृंदावन जा रहे थे तो बंगाल के नवाब हुसैन शाह की राजधानी से निकले और पीछे पीछे उनके लाखों लोग, और जहाँ जहाँ महाप्रभु पांव रखते थे लोग जाते थे वहाँ की धूली को उठा लेते थे, और इतनी धूली को उठाते थे कि वहाँ बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए और इतने लोग लाखों लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। तो नवाब हुसैन शाह ने कहा, सोचा कि ये कोई साधारण सन्यासी नहीं हो सकता, ये निश्चित रूप से खुदा है, स्वयं भगवान है। तो उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया, मंत्री का नाम था केशव छत्री, से बोला मेरे ख्याल से ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है, भिक्षुक नहीं है, ये भगवान है। तो केशव छत्री ने बोला ये मुसलमान है और बहुत द्वेष करेगा इसको मैं बोल दूँगा, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। तो बोला छुपाना पड़ेगा, बोला नहीं 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 ये सब अफवाहें हैं, ये तो कोई साधारण सा भिक्षुक है, दिखने में सुंदर है इसलिए लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, नाचता गाता अच्छा है, ये भगवान नहीं हो सकते, है ना। तो उनको छुपाया भगवान की ही रक्षा के लिए। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी अपने आप को छिपा के रखते थे। कोई बोलते थे आप स्वयं भगवान हैं, तो भगवान अपने चैतन्य महाप्रभु अपने काम बंद कर लेते थे। तो इस प्रकार से भक्तों को भगवान को छिपाना पड़ता है, और छिपाने के लिए वो किसी भी प्रकार के उसमें नैतिकता के स्तर को तोड़ भी सकते हैं। शिला प्रभुपाद जी जब बॉम्बे में उस पृथ्वी जमीन को लेने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे मिस्टर एन के साथ, तो प्रभुपाद लीलामृत में वर्णन आता है कि किस प्रकार एग्रीमेंट एक साइन करना था। प्रभुपाद हैदराबाद में थे और मिस्टर एन भी हैदराबाद में आए हुए थे, तो मिस्टर एन का श्याम सुंदर प्रभु से अच्छे संबंध थे। श्याम सुंदर प्रभु की छोटी सी बेटी थी सरस्वती, उनको बहुत अच्छी लगती थी, तो श्याम सुंदर प्रभु से बोल के उन्होंने मीटिंग अरेंज की। अब मिस्टर एन प्रभुपाद से डरते भी थे अंदर ही अंदर, बोले बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, कुछ इनके पास शक्तियाँ होंगी, कहीं शक्तियों से कुछ जादू टोना ना कर दें, मेरा सर ना घुमा दें। तो वो भी अपने साथ अपना एक गुरु लेकर आए मीटिंग में, तो मिस्टर एन थे उनके गुरु थे और प्रभुपाद जी थे और तमालकृष्ण गोस्वामी महाराज श्याम सुंदर प्रभु थे। तो प्रभुपाद ने बात करते करते जमाई लेना शुरू कर दी, तो उनके गुरु ने बोला लगता है आप बहुत थके हुए हैं। प्रभुपाद ने हाँ बहुत थका हुआ, आप जाके विश्राम कर लीजिए। बोले ठीक है। प्रभुपाद अपने रूम में आ गए, मिस्टर एन और उनके गुरु अपने रूम में चले गए। कुछ समय के बाद प्रभुपाद ने तमालकृष्ण महाराज को बुलाया, बोले देखो जब कोई व्यक्ति बोले ना कि आप थके हुए हैं, इसका मतलब वो खुद थका हुआ है। जब कोई व्यक्ति बोले आपको भूख लग रही लगता है, उसको खुद भूख लगी होती है। तो बोले देखो दोनों के दोनों सो रहे होंगे जाके। तो तमालकृष्ण गोस्वामी महाराज गए, वो दोनों खराटे मार रहे थे, बोले किसी ढंग से मिस्टर एन को पकड़ के लाओ। तो बड़े गहरी नींद में खराटे मार रहे, तमालकृष्ण गोस्वामी महाराज गए फटाफट, ए फटाफट प्रभुपाद बुला रहे हैं, चलो 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 चलो। और इतनी नींद में था उसको ध्यान ही नहीं आया कि गुरु को उठा के जाने, वो भी फटाफट आगे बाहर, और बाहर प्रभुपाद बिल्कुल तैयार बैठे और अंदर श्याम सुंदर पूरा एग्रीमेंट पहले से टाइप कर रहे हैं क्या करना है। तो बिल्कुल टाइप हो गया, बोले यहाँ साइन करो, वो नींद में था उसने भी साइन कर दिया, प्रभुपाद ने भी साइन कर दिया, हो गया, वो पता ही नहीं चला उनके गुरु सोते ही रह गए। तो जब ये बात हो गई तो तमालकृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद से कहते हैं, प्रभुपाद ऐसी डीलिंग्स करके ना मेरा मन बड़ा विचलित हो जाता है, फिर चैंटिंग में मन नहीं लगता ना। प्रभुपाद कहते हैं मेरे साथ ही कभी कभी हो जाता है ऐसा। फिर तमालकृष्ण महाराज कहते हैं लेकिन ऐसी डीलिंग्स करके ना, हालांकि मैं कई बार चैंटिंग में मन नहीं लगता, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ। प्रभुपाद बिल्कुल ठीक बात है, जब ऐसी मुश्किल परिस्थितियां आती हैं वो हमें मदद करती हैं भक्ति में और उन्नत होने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद भी जब आवश्यकता पड़ती थी डिप्लोमेसी का उपयोग करते थे। तो इसलिए हमें ये जो कृष्णा भावनामृत आंदोलन है, ये बहुत इसको गहराई से समझने का प्रयास करना है। ये केवल प्रभुपाद कहते हैं कोई स्टीरियोटाइप नहीं है, है ना, स्टीरियोटाइप नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि कृष्ण को किसी को देना है, उसके लिए कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस को हमें रेलेवेंट बनाना है, किस परिस्थिति में उसको स्वीकार कर पाएगा। ये जो तरह तथिक ये धोखा भी होता है, डिप्लोमेसी भी है, प्रभुपाद कहते हैं इस धोखे में दोनों पार्टियों का फायदा होता है, है ना, जिसको धोखा दिया और जिसने धोखा दिया दोनों को फायदा है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे एक माँ है उसने बच्चे को दवाई पिलानी है, बच्चा जिद कर रहा है दवाई नहीं पीऊँगा कड़वी है वे है, माँ कहती बच्चे दवाई पी ले लड्डू दूंगी लड्डू, तो लड्डू की लालच में दवाई पी लेती है, बाद में लड्डू भी नहीं देती। तो प्रभुपाद कहते हैं कि माँ ने बच्चे से धोखा किया नहीं, दवाई पिलाना बहुत जरूरी था। इसी प्रकार से हमें किसी ना किसी ढंग से संदेश पहुंचाना बहुत जरूरी है, पैकिंग जैसे मर्जी कर दे। इस संसार में जो धोखा दिया जाता है, शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज कहते हैं चीटर एंड चीटेड, है ना। वो क्या है, सुंदर कथा सुनाते हैं ना कि हिमालयों में बड़े बड़े साधु रहते हैं, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी कंवारी कन्याओं को ले जाते हैं, वो चाहते हैं कि वो कन्या उनको प्रलोभित करेंगी, वो उनसे विवाह कर लेंगे और उनकी जो संतान होगी वो बहुत शक्तिशाली होगी क्योंकि उन्होंने बहुत ब्रह्मचार्य का पालन किया हुआ है, और फिर ये आगे जाके मेरे धंधे को संभालेगा। तो इस उद्देश्य से वो सोचे हम साधुओं को धोखा देंगे, अपनी कंवारी कन्याओं को ले जाते हैं। जब ये बात धोखेबाजी उन लोगों को मालूम चला, बोले ये तो अच्छी बात है, वो साधु बन के वहाँ आ गए। तो वो सोच रहे हम साधुओं को धोखा दे रहे हैं और साधुगण उनकी कन्याओं के साथ दुर्व्यवहार करके चले जाते थे। तो कौन किसको धोखा दे रहा है पता नहीं, दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और दोनों का नुकसान है। लेकिन भक्ति में जो महान आत्माएं ऐसा करती हैं दोनों का लाभ होता है। और इस प्रकार से धोखा देने का एक और ऊंचा स्तर है, भगवान भी कभी कभी अपने वायदा तोड़ते हैं। भगवान ने कब अपना वायदा तोड़ा? भीष्म पितामह के लिए, है ना। भगवान ने बोला मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने अपना वायदा तोड़ दिया। भगवान ने सारे नैतिकता के स्तर तोड़ दिए। युधिष्ठिर को बोला झूठ बोलो, अश्वत्थामा मर गया है ना। भगवान ने भीम और दुर्योधन का जब युद्ध चल रहा था, भगवान ने भीम को इशारा किया कि दुर्योधन के पेट के नीचे आक्रमण करो, क्योंकि भगवान को मालूम था उसका ये हिस्सा कमजोर है और ये उसमें युद्ध में इसकी आज्ञा नहीं दी जाती। फिर भी उन्होंने, भगवान ने कह दिया तो सब कुछ नैतिक है, तो भीम ने इसका पालन किया। और सबसे बड़ा वचन तोड़ा भगवान ने जब गोपियों को छोड़ के भगवान जा रहे थे वृंदावन छोड़ के, तो गोपियों ने बोला क्यों जा रहे हो? भगवान बोले बस अभी कुछ और असुरों का वध करके अभी आ रहा हूँ बस, है ना। यहाँ तो रोज ही असुरों को मारता था, कंस का वध करके वापिस आ जाऊँगा। उसके बाद भगवान आए नहीं, मथुरा से द्वारका चले गए। और फिर जब द्वारका चले गए, फिर जब सूर्य ग्रहण लगा, फिर भगवान वहाँ पर आए और सारे ब्रजवासियों को मालूम चला कि भगवान अब कुरुक्षेत्र में हैं, तो सारे ब्रजवासी वहाँ चले गए। और फिर जब श्रीमती राधा रानी ने देखा कृष्ण को कि वहाँ पर कुरुक्षेत्र में हैं लेकिन राजा के वेश में हैं, बोले नहीं ये मिलना कोई मिलना नहीं है, है ना, चलो आप हमको वृंदावन लेके चलेंगे। और फिर सारे रथ के घोड़े खोल देते हैं और सारी गोपियाँ कृष्ण को, बलराम को और सुभद्रा जी को रथ पे बिठा के खींच के लाती है। पर क्या बन जाती है? जगन्नाथ रथ यात्रा, है ना। जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय। तो जगन्नाथ रथ यात्रा के पीछे भी वो मुख्य सिद्धांत ये है कि भगवान ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया था। और भी इसके वर्णन है कैसे भगवान जगन्नाथ जी का ये रूप प्रकट हुआ। जब श्रीमती राधा रानी भगवान के विरह में बहुत उन्मत्त हो गई और 10 स्थितियां बताई गई हैं राधा रानी के प्रेम की, और उस प्रेम की अंतिम स्थिति थी मृत्यु, है ना। और जब ये बात पहुंचती है कृष्ण के पास द्वारका में कि राधा रानी की ये स्थिति है, तो कृष्ण बोलते हैं अभी चलता हूँ। पहले नारद मुनि बोला बलराम जी आप जाइए। बलराम जी बोले मैं तो नहीं जा सकता, मेरी रेपुटेशन पहले ही खराब हो चुकी है, मैं भी पहले गया था, मैंने बोला कृष्ण आने वाले हैं, कृष्ण तो गए नहीं। तो कृष्ण बोले फिर कैसे? सुभद्रा जी आप जाइए। सुभद्रा बोलती हाँ मैं जाऊँगी। तो बलराम ने कहा मेरी बहन अकेले कैसे जाएगी, मैं भी जाऊँगा। तो फिर बलराम जी आगे जाते हैं, सुभद्रा जाते हैं, फिर कृष्ण भी चलते हैं। और कृष्ण जब जा रहे हैं तो पहले से द्वारका से निकल रहे हैं राधा रानी के प्रेम में बिल्कुल उन्मत्त है। और जब वहाँ पहुँचते हैं निधि वन में और देखते हैं कि राधा रानी बिल्कुल मृत अवस्था में लगभग अपने प्राण छोड़ दिए हैं, तो कृष्ण राधा रानी की स्थिति को देखकर कृष्ण में मूर्छित हो जाते हैं और उनके सारे के सारे अंग संकुचित हो जाते हैं। और फिर वो कैसा रूप ले लेते हैं? जगन्नाथ जी का। तो जगन्नाथ जी हैं वो राधा रानी के विरह में हैं, कृष्ण जो राधा रानी के विरह में हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत रूप है। और भगवान के हाथ ऐसे हैं एक आलिंगन की मुद्रा में कि आप आइए आलिंगन कीजिए। और भगवान की बड़ी बड़ी आँखें हैं बिल्कुल प्रेम में भक्तों के विरह में। तो इस प्रकार से ये भगवान का सुंदर रूप है। आज हमें बहुत सुंदर मौका मिलेगा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए। जैसे देवकी का भगवान कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव था, जगन्नाथ जी की एक भक्त थी जिनका नाम था करारी देवी। वो क्या करती थी, रोज भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी। और जगन्नाथ जी को खिचड़ी इतनी अच्छी लगती थी कि जगन्नाथ जी आते थे उस खिचड़ी को खाते थे और वापस फिर अपने आल्टर में चले जाते थे और बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाती थी। तो एक बारी जी करारी देवी जी जगन्नाथ धाम में कोई साधु भी आते थे उनकी भी सेवा करती थी। तो एक साधु आए, ये दक्षिण भारत से आए थे, तो उन्होंने देखा है करारी देवी कैसे खिचड़ी बना रही है। सुबह उठते ही बिना नहाए, बिना किचन को साफ किए, बड़े ही बर्तन को भी नहीं धोया, बड़े प्रेम से खिचड़ी बना रही है। अरे क्या कर रही है, भगवान को ऐसे भोग लगाते हैं? बहुत विधियाँ होती हैं, पहले सुबह उठने से पाओ आप, पहले फिर उस स्थान को साफ करो जहाँ आप सोए थे, फिर खुद स्नान करो, फिर पूरे रसोई घर को साफ करो, फिर जिस बर्तन में धो रहे हो बना रहे हो उसको साफ करो, सारे के सारे और बर्तन उसको साफ करो। बड़े प्रेम से सावधानी से भगवान को भोग लगाना चाहिए, ये क्या कर रहे हो, ये तो बहुत अपराध कर रहे हो। तो बेचारी सरल महिला थी, बोलो क्या क्या करना है बताओ दोबारा से, पूरा मैनुअल दे दिया उसको, ये करना है। वो बेचारी लग गई और भगवान जगन्नाथ जी अपने टाइम पर खिचड़ी तैयार हो गई, और देखा वो तो अभी स्नान कर रही है, फिर वापस चले गए। फिर दोबारा आए तो देखे क्या अभी रसोई घर साफ कर रही है, फिर भगवान क्या है इतना समय लग गया, फिर वापस चले गए। फिर दोबारा आए बर्तन धो रही है, भगवान को बड़ा क्रोध आया, बड़ी तिरछी नगर से उस साधु को देखा, ये सब साधु के कारण हो रहा है। फिर वो चले गए, फिर आए तो बड़े खिचड़ी बन रही थी, भगवान फिर क्या प्रतीक्षा करते, फिर चले गए। वापस आए तो गर्म गर्म खिचड़ी थी, भगवान ने चलो जो जल्दी दो फटाफट दो। भगवान अभी खा ही रहे थे, वहाँ पे आल्टर में पुजारी ने घंटी बजानी शुरू कर दी भोग लगाने के लिए। भगवान बोले वहाँ भी जाना है, भाग के वहाँ गए। वहाँ गए तो मुँह पे खिचड़ी लगी हुई थी, तो बोले भगवान ने खिचड़ी अभी तो भोग लगाया नहीं, खिचड़ी कहाँ से आ गई? तो तो भगवान को बताना पड़ा। वो जो करारी देवी थी, भगवान जगन्नाथ जी को इतनी भूख लगती थी, आके बोलते थे करना माँ जल्दी कर, जल्दी कर, कर माँ कर माँ, उसका नाम कर्मा बाई पड़ गया। बोले कर्मा माई मेरी भक्त है, वो खिचड़ी बनाती है। लेकिन जब से वो साधु आया है उसने पागल कर दिया मेरे भक्त को, और इतना कितने रूल वूल बता दिए, तो मेरे को बिल्कुल आनंद नहीं आया। तो उसको साधु को बाहर करो, है ना। तो साधु को बुलाया गया, क्या कर दिया आपने, आपने ये जो सारे नियम दक्षिण भारत में चलाओ, यहाँ नहीं चलेंगे, और भगवान जी बहुत रुष्ट हैं। तो साधु बेचारा घबरा गया और दोबारा उस महिला के पास गया, कर्मा देवी के पास। कर्मा भाई ने देखा ये दोबारा से आ रहा है, बोला और इंस्ट्रक्शन देगा, वो घबरा गई। बोला ने क्षमा करो, जैसा पहले करते थे वैसे ही बनाओ, भगवान को वही खिचड़ी पसंद है। तो वो बनाने लगी और भगवान रोज आते थे, खिचड़ी खाते थे। और जब कर्मा देवी जी का देहांत हो गया, शरीर छोड़ के भगवान के धाम चले गई, तो उस दिन जब पुजारी भगवान को भोग लगा रहे थे तो भगवान भोग ही स्वीकार नहीं कर रहे थे, और भगवान जोर जोर से रो रहे थे कि मेरी माँ चली गई। तो राजा उनके पास आए, बोले भगवान आप क्यों नहीं भोग ले रहे हैं। बोले मेरी माँ जो मैं खिचड़ी खिलाती थी, अब कौन मुझे खिचड़ी खिलाएगी। तो राजा ने बोला फिर आप उसको धाम क्यों ले गए इतनी जल्दी। तो बोलते मैं अपने भक्तों को यहाँ नहीं रहने दे सकता, ये तो गंदा जगत है, मृत्य लोक है, दुखी दुख है, मैं उनको धाम में ले गया। बोले मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। बोले हम तो हमारे हृदय में तो उतना प्रेम है नहीं, लेकिन उसके नाम से हम रोज खिचड़ी बनाएंगे और आपको खिलाएंगे, है ना। तो आज भी जगन्नाथ मंदिर में रोज खिचड़ी बनाई जाती है और भगवान को खिलाई जाती है। तो ये जगन्नाथ जी का अपने भक्तों से प्रेम है। वो कर्मा भाई जैसे देवकी कृष्ण के लिए वात्सल्य भाव रखती थी, तो कर्मा भाई का जगन्नाथ जी के लिए इतना वात्सल्य भाव था। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी ने हमें ट्रिक किया, इस कृष्णा कॉन्शियस आंदोलन में हम सब आ गए हैं, और हमें भी अब इस भक्ति को बहुत संभाल के रखना है। और अपनी भक्ति की सुरक्षा के लिए और इस भक्ति के प्रचार के लिए हमें हो सकता है कई परिस्थितियों में कृष्ण को छुपाना भी पड़े, और हो सकता है कई बार हमें दिव्य डिप्लोमेसी का भी उपयोग करना पड़े, लेकिन वो विशेष विशेष परिस्थितियों में। लेकिन मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अपनी भक्ति को बचा के रखें और दूसरों को भी ये भक्ति में जोड़ सकें। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा। थैंक यू पूजी। पूजी जैसे हम देखते हैं कि जो कृष्ण लीला के अंदर कंस के बारे में अगर हम पढ़ें, तो जब आकाशवाणी हुई थी उससे पहले तो कंस के बारे में कोई जिक्र रहने की ये इतना अक्रूर था या जो भी था, लेकिन आकाशवाणी के बाद से सारा देखा जाता है। तो क्या पहले भी कंस ऐसे थे या उसके बाद ही ऐसे हुए?
नहीं नहीं, कंस बहुत क्रूर था। कंस के विषय में पुराणों में कथा आती है, और पूर्व जन्म से क्रूर था वो, तभी उसको उग्रसेन के यहाँ जन्म मिला। काल निमित था वो और क्रूर असुरी था वो, हमें नहीं मालूम, लेकिन बाकी पुराणों में गर्ग संहिता में इसका खूब वर्णन है।
और जी एक सवाल हो, जैसे कंस के आगे ऐसी कोई स्थिति आई तो वो इतना क्रूर हो गया, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि स्थितियां हमारे प्रतिकूल होते हैं बिल्कुल, और हम भी मतलब उसमें यार अब चैंटिंग कैसे होगी, साधना कैसे होगी, ये सब हमारे भी लाइफ में आ जाता है, तो उस समय कैसे हम अपने आप को मतलब भक्ति से जोड़े रखें ताकि साधना थोड़ी सी और स्ट्रांग हो जाए?
आपका अर्थ है कि जिस प्रकार से कंस अपनी बहन के प्रति इतना स्नेह दिखा रहा था, लेकिन विपरीत परिस्थितियां होती उसका असली स्वभाव सामने आ गया, उस प्रकार से हम लोग भी सुनते हुए हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं हमारा भी असली स्वभाव निकल के सामने आते हैं, है ना, ये मुख्य बात है ना। तो उस समय में कैसे हम अपना संतुलन बनाए रखें, तो ये चुनौती तो रहेगी, लेकिन इसमें घबराना नहीं चाहिए, अपने स्वभाव से हम संघर्ष करते ही रहते हैं। मुख्यतः जो बात मदद करती है कि भक्तों का संग, भक्तों के संग में रहें, भक्तों के मार्गदर्शन में रहें, तो धीरे 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 हम प्रकृति के गुणों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इनके इन प्रकार इस प्रोसेस से जुड़े रहें और भक्तों के संग में रहें, तो इससे सहायता मिलती है।
हरे कृष्ण प्रोजी। प्रोजी आपने जो बताया कि ब्रिज प्रीचिंग या रेवोल्यूशनाइज प्रीचिंग जो होती है, आपने प्रभुपाद जी का एग्जांपल भी दिया। प्रोजी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने भी बहुत रेवोल्यूशनाइज्ड तरीके अपनाए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, कॉलेज प्रीचिंग करी, टीवी इंटरव्यूज किए, बट हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने कंटेंट को कभी मेलो डाउन नहीं किया, और प्रभुपाद ने कभी लोअर स्टैंडर्ड्स को ब्रीच नहीं किया, और जहाँ सच बोलने की जरूरत थी वहाँ प्रभुपाद ने डंके की चोट पर सच बोला। बट ऐसी चीज हम यहाँ पे नहीं देखते हैं, और जैसा कि आपने बताया कि जो इस प्रकार की प्रीचिंग होती है दैट इज वेरी एक्सेप्शनल और दैट हैज टू बी ऑथराइज्ड, बाय समवन हायर. बट हम देखते हैं कि ब्रोजी कई बार ऐसा होता है कि जो प्रीचर्स होते हैं वो सच नहीं बोलते जब वो बोल सकते हैं, और जो लोअर स्टैंडर्ड्स को इस तरह से प्रीच किया जाता है कि नहीं इतना चलता है और अभी लोग नए हैं हम इतना नहीं बोल सकते, तो इसके बारे में ब्रोजी कैसे?
हाँ ये बहुत परिपक्वता चाहिए, बहुत मैच्योरिटी चाहिए कि कैसे इनडायरेक्ट प्रीचिंग करनी है. कई बार इनडायरेक्ट के नाम पे इतना इनडायरेक्ट हो जाते हैं कि कृष्ण जाते हैं, हाँ बीज बनता ही नहीं है. तो बिल्कुल बात ठीक है. तो इसीलिए किसी के सुपरविजन में, मैच्योर डिवोटी के सुपरविजन में ही होना चाहिए. और इसीलिए ये अच्छा है, इस कॉन में कलेक्टिव विजडम है. अगर एक ग्रुप बहुत ज़्यादा तथाकथित लिबरल हो रहा है तो उसको चेक में रखा जाता है. तो इसीलिए चेक एंड बैलेंस है, और जो मुख्य सिद्धांत है उस पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए. हम ये नहीं कह रहे कि चार नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है, 16 माला मिनिमम जप करना नहीं है. हाँ, कैसे इंट्रोड्यूस करना है ये परिस्थितियों पर निर्भर हो सकता है ना. यस, इट्स ए वेरी फाइन बैलेंस कैसे इसको रखना है, इसमें मैच्योरिटी चाहिए. ठीक है, अब सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी से निवेदन है कि बड़े उत्साह से आज हम जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेंगे. और क्योंकि प्रारंभ में तो सभी भक्त उपस्थित होते ही हैं, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है बैचेस बदलते रहते हैं. एक बैच चला जाता है, दूसरा बैच आता है, एक बैच चला जाता है, दूसरा आता है. लेकिन जब यहाँ तक पहुँच जाती है पेट्रोल पंप के बाद आगे, तो काफ़ी भक्त शाम के 7:30-8 बज जाते हैं, तो रथ यात्रा में बहुत कम लोग बचते हैं. लेकिन हमें सोचना चाहिए जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको पहली बार ही रथ यात्रा के दर्शन हो रहे हैं, तो सोचेंगे अरे इस्कॉन की रथ यात्रा, इस्कॉन इतना फेमस, इनकी रथ यात्रा इतने कम लोग, कोई उत्साह भी नहीं है. तो उनके लिए उनको नहीं मालूम कि प्रारंभ में कितने उत्साह से लोग नाच रहे थे, वो तो अभी देख रहे हैं. तो जगन्नाथ जी प्रसन्न होंगे अगर हम शुरू से लेकर अंत तक पूरे उत्साह से नाचते रहें. और एक गारंटी है कि जो जगन्नाथ जी के सामने नाचता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसको भौतिक स्तर पर कभी थकावट नहीं होगी. आप में से कितने लोगों का ये अनुभव है कि भगवान के सामने नाचते हैं ऐसा नहीं कि अगले दिन शरीर टूट रहा है, ये हो रहा है, बिल्कुल नहीं होता है ना. कभी भगवान के सामने नाच रहे हैं, हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंडर आ जाते हैं, तो कोई आनंद ही आनंद होगा. तो ज़्यादा से ज़्यादा हम खूब नाचें, कीर्तन करें, उत्साहित रहें, और अपने सभी मित्रों संबंधियों को आमंत्रित करें. तो इससे होगा क्या, सब हम मिलकर भगवान जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए इस यात्रा का आयोजन करें. तो आप सबका बहुत धन्यवाद. जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की, हिताय गौर प्रेमानंदे.
रुक्मिणी कृष्ण प्रभु की, हरे कृष्णा. तो सब कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं. वैसे प्रभु जी ने बताया जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा कितने बजे शुरू होगी, 2 बजे लगभग, ज्वालाहेड़ी मार्केट महाराज अग्रसेन भवन से. तो आप सब भक्त सादर आमंत्रित हैं, और शुरू से लेके अंत तक आपने जगन्नाथ जी को ज्वालाहेड़ी मार्केट से लेके रिंग रोड तक पहुंचाना है उन्हें. और वैसे फिर भी प्रैक्टिकली 7 बजे से जो प्रसादम की व्यवस्था है वो हमारे इस्कॉन पंजाबी बाग मंदिर के अंदर है सब भक्तों के लिए. तो ये सूचना आप दे सकते हैं जो भी भक्त आएंगे, और आप सबके लिए भी सूचना है. और कल शाम से एकादशी है कल, और विशेष उत्सव शुरू हो रहा है, वो क्या है, श्री श्री राधा कृष्ण दुल्हन यात्रा. तो शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक आप सब भक्त राधा राधिका रमन को झूला झुलाने के लिए आ सकते हैं. और 13, 14, और 15 तारीख को मॉर्निंग में श्री बलराम कथा रहेगी हिजोलेंस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज के द्वारा. तो आप सब भक्त इन उत्सवों के अंदर जो है भाग ले सकते हैं, 3 दिन महाराज के संघ का लाभ ले सकते हैं. और 15 तारीख को फिर कौन सा उत्सव है, श्री श्री बलराम जयंती, श्री बलराम जी की. तो उस दिन भी महाराज कथा करेंगे, अभिषेक होगा, और उस दिन लास्ट डे है शाम को झूलन यात्रा का. हरे कृष्णा.